अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो।
ओम शांति। आप सभी बाबा के दिल तक नशीन, ऐसे कहें दिल तक नशीन। सभी भाइयों ने बहुत अच्छी भट्टी की और मुझे उससे बहुत पावर मिल रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक मिला है, क्या टॉपिक है आज का? टॉपिक पता है आपको? नहीं पता है? मन को एकरस बनाने की एक्सरसाइज क्या है? मन हमारा एकरस बन जाए, मन हमारा इधर उधर भटके नहीं, स्थिर हो जाए, अचल अडोल। जो बाबा कहते हैं ना, महावीर किसे कहते हैं? हम बाबा के बच्चों का क्या क्या गायन है, कुमारों का क्या गायन है, क्या गायन है? महावीर। और महावीर की निशानी क्या होती है? अचल अडोल और स्थिर, अर्थात जिसका मन कभी चंचल ना हो, अडोल रहे, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी परिस्थितियां आए, कभी भी हिले नहीं, स्थिर रहे। तो ऐसा हमारी स्थिति बन जाए, मन सदा एकरस रहे, चाहे माया कितने भी पेपर ले, कभी भी हम हिले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? तो इसके लिए हम अगले कुछ मिनट इस पे चिंतन करेंगे गहराई से, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हम में से ही कुछ बच्चे बाबा के क्या बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं? सभी बनने वाले हैं। वैसे मैं कुछ क्यों कहें, विजय माला के दाना बनना सभी की इच्छा क्या है? हम कौन बने? विजय माला का दाना बने। कौन कौन बनना चाहते हैं, हाथ उठाएं जो बनना चाहते हैं। सभी बनना चाहते हैं, वेरी गुड। तो देखो, विजय माला जो 108 की माला है ना, 108 की माला खाली सनातन में नहीं पूजी जाती है ना। अगर आप देखेंगे, खाली हिंदू नहीं पूजते हैं उसको, मुसलमान भी पूजते हैं। मुसलमान जो फकीर होते हैं ना, सूफी फकीर होते हैं, वो भी माला जपते हैं, और क्रिश्चियन भी उसको जपते हैं। क्रिश्चियन जो पादरी होते हैं ना, उनके पास भी माला होती है। तो 108 की माला अक्रॉस द ग्लोब है ना, अक्रॉस द ग्लोब सभी मनुष्य आत्माएं 108 की माला को सम्मान करती हैं, उनका सम्मान करती हैं। तो वो इतने महान बने कि सारी दुनिया उनको सलाम करती है, सारी दुनिया उनको माथे से लगाती है ना, उनका सिमरण करके अपने विघ्नों को दूर करती है, नहीं ऐसा? तो महान कैसे बनते हैं वो? क्योंकि वो ज्ञान की बहुत महीनता में जाते हैं। अभी भी बाबा की मुरली थी ना, एक दिन संडे की मुरली थी, कि जो महावीर है, महावीर की निशानी क्या है? जो महीनता में जाए। तो ये ज्ञान की महीनता में जाना, योग की महीनता में जाना, और धारणाओं की महीनता में जाना, सेवा की भी महीनता में जाना, ये चार हमारे सब्जेक्ट हैं। जो इनकी महीनता में जाएगा वो महान बनेगा, और जो महीनता में जाएगा उसकी ही बुद्धि एकरस रहेगी, उसका ही मन एकरस रहेगा। अगर ज्ञान को ऊपर ऊपर से समझा होगा, धारणाओं को ऊपर ऊपर से किया होगा, योग में हम ऊपर से ही चल रहे हैं। अगर हम बैठे योग में 45 मिनट योग किया, चलो हो गया पूरा, भट्टी 5 दिन की, चलो पूरी हो गई, चलो ओम शांति, है ना, यहां सुना बहुत अच्छा, थोड़े दिन हमने इसका असर रहेगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना, है ना, फिर ढीले होते जाएंगे, है ना। जैसे हमारे जैसे हार्ट के प्रोग्राम में लोग पेशेंट्स आते हैं ना, कहते हैं हम आते हैं तो हमें 3 महीने तो बहुत अच्छा रहता है, एक्यूरेट हम चलते हैं, तो फिर उसके बाद करंट ढीली होनी शुरू होती है। आम आदमी और वैज्ञानिक में क्या फर्क होता है? आम आदमी और वैज्ञानिक में क्या फर्क है? आम आदमी भी फाइव एलिमेंट्स को यूज करता है, भूमि जल वायु अग्नि आकाश, पांचों को यूज करता है और यूज करके उसको अपना जीवन यापन करता है। किंतु वैज्ञानिक क्या करता है, इनकी महीनता में जाता है, इन्हीं फाइव एलिमेंट्स की, भूमि की कोई एक मेटल लेगा उसकी महीनता में जाएगा, उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएगा, वायु को लेगा वायु की महीनता में जाएगा, ऑक्सीजन की महीनता में जाएगा, और उससे फिर क्या क्या बन जाता है, मशीनें बन जाती है ना, एयर कंडीशनर बन जाता है ना, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स बन जाते हैं, वेंटिलेटर बन जाता है, इससे लोगों को सांस दे सकते हैं, है ना, हार्ट लंग मशीन बन जाती है, हार्ट लंग को बंद करना पड़े थोड़ी देर के लिए तो इतनी देर वो मशीन काम करती रहेगी, है ना, क्या क्या चीज बन गई, प्लेन बन गया, एरोप्लेन बन गया, है ना, जिसमें आदमी अपना बैग लेके उड़ सकता है ना, नहीं ऐसा। तो हम भी अगर ज्ञान की महीनता में जाएं, ज्ञान की गहराई में जाएं, तो हम फिर उसको गहराई से अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, और हम फिर जैसा हमसे बाबा चाहता है, जैसी परिस्थिति हो वैसा हम उसको समझ परख सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, और अपने चित्त को, मन को शांत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, एकरस बनाने के लिए पहले चित्त शांत होना बहुत जरूरी है, पर पहले चित्त क्या है ये समझना बहुत जरूरी है ना, दिल क्या है ये भी समझना जरूरी है। जो दिल को चित्त को बहुत अच्छे समझते हैं वो हाथ उठाएं, जिनको जिनको बहुत अच्छे से क्लियर है दिल क्या है, विवेक क्या है, बुद्धि क्या है, जिनको बहुत अच्छे से क्लियर है, जिनको बहुत अच्छे से समझ आ गई, दिल विवेक बुद्धि चित्त और मन, हाथ उठाएं जिनको बहुत अच्छा क्लियर है, दो तीन चार, आधा 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 हाथ उठा रहे हैं, कोई आधा कोई पूरा कोई, पर बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, चार पांच लोगों ने, भाई भाइयों ने सिर्फ हाथ उठाया है ना। तो जब हम ज्ञान की महीनता में जाएंगे फिर ज्ञान का हम योग का प्रयोग कर सकेंगे, ना खाली अपनी लाइफ पर, बल्कि देखिए जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे ना, हमें प्रैक्टिकली, अब सपोज बाबा हमें रोज कहता है हमें मनसा सेवा का पॉइंट मिलता है, रोज हमें मनसा सेवा करनी होती है ना, तो हमारी मनसा सेवा वहां तक हो रही नहीं हो रही, हमारा मन एकरस होगा तो मनसा सेवा होगी ना, अगर हमारा मन ही एकरस नहीं है तो हम कैसे मनसा सेवा करेंगे, तो कैसे हमारी मनसा सेवा ऑटोमेटिक हो। अगर मैंने संकल्प किया मैं ऐसे बैठ के संकल्प करूं मैं परम धाम में बैठा हूं और मेरे से सारे विश्व में किरणें जा रही हैं, तो किरणें जा रही हैं क्या, जा रही है किरणें, तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है। तो आज हम इसी बात को लेंगे कि हमारा मन एकरस कैसे बने और उससे हमारी मनसा सेवा कैसे, उसके पहले हम 10-15 मिनट पहले थोड़ी सी ज्ञान और योग की गहराई में जाएंगे, ठीक है। इसके लिए चलो पहले एक बार दोबारा से हम लोग 2 मिनट के लिए अपने मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र कर देंगे, उसमें एक ही संकल्प होगा, 2 संकल्प नहीं होंगे, सिर्फ एक ही संकल्प होगा, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चमकता हुआ सितारा, अति सूक्ष्म सितारा चमकता हुआ, और उसी से मेरा शरीर चल रहा है, उसी से 7 एनर्जी कहो 7 लाइट कहो मेरे अंग अंग को नरिश कर रही है, ठीक है। परमात्मा मेरे साथ है, ऊपर है, और वहां से वो सागर है 7 गुणों का कहो 7 एनर्जी का कहो, वो मुझ में आती जा रही है और मुझसे सारी शरीर में जा रही है और मुझसे शरीर रोम रोम से वो एनर्जी बाहर निकल रही है। चलिए इसी स्थिति में 2 मिनट के टिक जाए, है ना, बाकी सब कुछ बंद कर दें, किसी का मोबाइल ऑन है तो मोबाइल ऑफ कर दें। ओम शांति। चलिए हम आत्मा की महीनता में चलते हैं, मन की महीनता में चलते हैं। आत्मा हम सभी जानते हैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, और आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। कहां पर आत्मा, कहां पर आत्मा है, यहां पर है, यहां पर है कि इससे अंदर है, कितनी अंदर, लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 2.5 इंच अंदर और 3 इंच नीचे, यहां से 3 इंच नीचे और 2.5 इंच यहां से अंदर। कहां पर है, दोनों ब्रेन है ना, राइट और लेफ्ट ब्रेन है, और उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस क्या है? दोनों ब्रेन्स, राइट और लेफ्ट ब्रेन का, इन दोनों का कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस में होता है। जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर है वो डिकोडिंग कहां पर होती है? हाइपोथैलेमस में होती है। और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको बॉडी की मास्टर ग्लैंड कहते हैं। उससे हार्मोन निकलते हैं। हाइपोथैलेमस में ही थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट समझते हैं? हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है हमेशा, चाहे हम 50 डिग्री वाले टेम्परेचर में चले जाएं, चाहे हम 5 डिग्री वाले टेम्परेचर में चले जाएं, चाहे हम कारगिल में चले जाएं जहां -10 टेम्परेचर रहता है, रशिया में चले जाएं जहां -20 टेम्परेचर रहता है, मॉस्को में, तो हम कहीं भी चले जाएं हमारा टेम्परेचर कितना रहता है? 37, 98.4। बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता क्योंकि वहां पर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर वही मेंटेन रहता है। हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई, उसी में हाइपोथैलेमस में, वो क्लॉक क्या कहती है? किस समय उठो, किस समय सो जाओ, किस समय नाश्ता करो, किस समय लंच करो, किस समय डिनर करो, हर चीज का टाइम उसमें सेट है। उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारी हर चीज एक्यूरेट चलती है। उससे उसके विपरीत चलते हैं तो हमारी सब कुछ सिस्टम, चाहे वो मन का सिस्टम हो चाहे बॉडी का सिस्टम हो, खराब हो जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट जो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है, जो हाइपोथैलेमस में ऐसी सी सेल्स हैं जो सब कुछ सेंस कर सकती हैं। तो जो रिसर्च हुई है उसमें ये पता लगा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम पेट स्कैन कर सकते हैं, एक पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन, जैसे सीटी स्कैन होता है ना, ऐसे स्कैन कर सकते हैं। तो वहां पर जब ये देखा गया, जब मेडिटेशन करते हैं तो वहां पर ही काउंट सबसे ज्यादा बढ़ती है।
एक मिनट हम लें माइक।
प्लीज प्लीज प्लीज।
इसको नहीं, इसको पकड़े रहिए, डंडा आपका माइक हमारा।
अच्छा अच्छा अच्छा।
ओम शांति। दोपहर को 2 बजे 1.5 बजे जो मिले थे तो आप लोग बहुत उमंग उत्साह में थे, और कोई ने कहा था नाइट भट्टी बहुत साल हो गया है, थोड़ा किया जाए। तो 2 बजे रात से बाबा का ना अमृत वेला 2 बजे, इसलिए अमृत वेला नाइट में नहीं हम पूरा जगाएंगे आपको। तो 2 बजे रात से जो यहां आकर के भट्टी करना चाहते हैं वो जरा 1 सेकंड हाथ उठाए। वेरी गुड। तो आप लोग 2 बजे यहां आ जाइएगा और हम भी आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए, गुप्ता जी हार्ट का चार्ज करना, मतलब हार्ट माइंड और एवरीथिंग आई विल चार्ज।
2 बजे सभी आ जाना, भट्टी करना बहुत पावरफुल। तो हम आपसे बात कर रहे थे, तो आत्मा इस जगह पर है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में है, अति सूक्ष्म बिंदु है। जब आत्मा शरीर के बाहर है तो उसमें मन बुद्धि संस्कार अंदर समाये हुए हैं, क्योंकि जब आत्मा आ जाती है 5वें महीने पे गर्भ में आ जाती है, उस समय ये एनर्जी को निकालना शुरू करती है। क्या एनर्जी को? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां निकालना शुरू करती है। मतलब एनर्जी जैसे बल्ब से लाइट दो निकल रही है, दो एनर्जी निकल रही, कौन कौन सी? लाइट और हीट। सबसे ज्यादा लाइट और हीट कहां पर है? बल्ब के पास। अगर बल्ब को हम हाथ लगाए तो बल्ब कितना गर्म होगा, नहीं? और लाइट भी सबसे ज्यादा वहीं होगी। तो ऐसी आत्मा जब बॉडी में आ गई तो ये एनर्जी निकालना शुरू करती है। और देखेंगे अगर लाइट के इसके आसपास भी देखेंगे वलय है, आभा मंडल जैसे ना, इसके आसपास होता है। तो ऐसे ही जो आत्मा के आसपास जो सबसे ज्यादा लाइट है ना, ये 7 लाइट है। ज्ञान, ज्ञान क्या है बेसिकली? ABCD। ज्ञान वैसे तो बहुत विस्तार है, किंतु सार रूप में ज्ञान को क्या कहेंगे? ABCD। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, कनेक्शन है ना, संबंध, एंड डी फॉर ड्रामा, राइट? तो ये जो ABCD है ये जैसे आत्मा से निकल रही है। और जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, अल्ट्रासाउंड भी साउंड होती है किंतु उसको हम फील कर, उसको हम सुन नहीं सकते हैं। जैसे हम सोनोग्राफी करते हैं ना, तो यहां साउंड अंदर भेजते हैं, वो साउंड अंदर से टकरा के वापस आती है। तो जहां पे ऑर्गन है, ऑर्गन की थिकनेस हम पता कर सकते हैं, उस ऑर्गन में कोई पस हो गई तो उस पस का हम पता, उसका अलग पता लग जाएगा। ऐसे समुद्र की गहराई नापनी हो तो हम 10 इंची टेप लेके नहीं जाते हैं समुद्र में, ऊपर से मशीन से अल्ट्रासाउंड नीचे भेजते हैं, वो धरती को टच करके, समुद्र की तली को टच करके वापस आ जाती है, और हमको उसकी स्पीड पता है, उस स्पीड से हम समुद्र की गहराई नाप लेते हैं। चांद की ऊंचाई नापनी हो तो कैसे नापते हैं? इसी तरह से चांद की ऊंचाई नापते हैं, है ना? अगर सूरज की ऊंचाई नापनी हो तो हम लाइट वहां लाइट को यूज करते हैं, है ना। तो लाइट के हिसाब से कि 8 मिनट में लाइट यहां से यहां आती है, तो लाइट की स्पीड कितनी है, तो लाइट की स्पीड इतनी है तो इतनी दूर सूर्य है, राइट। इस तरह से हम ये हमारी एनर्जी डिफरेंट एनर्जी से हम यूज करते हैं। तो यहां से एक साउंड निकलती रहती है और वो बॉडी के हर सेल पे जाती रहती है। 80,000 बिलियन सेल्स हैं बॉडी में, तो हर सेल पर वो साउंड जाती है, ABCD की साउंड जाती रहती है। इसी को इसलिए कहा गया अनंत नाद कहा गया, अनलिमिटेड साउंड, बेहद की साउंड है ये, जिससे बॉडी चलती रहती है। और ABCD आत्मा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और डी फॉर ड्रामा, संसार एक ड्रामा है, इसमें हम सब एक्टर्स हैं। आप सभी बात को बहुत गहराई से जानते हैं, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं। और परमात्मा इसका डायरेक्टर है और कर्म सिद्धांत के अनुसार डायरेक्ट कर रहा है। जो कुछ मैंने पिछले जन्म लिया हुआ है, किसी को दुख दिया हुआ है, वो मेरा साथी बन के, मेरा पड़ोसी बन के, मेरे सेंटर में साथ मेरे साथ रह करके, है ना, बड़ा या छोटा, मेरे साथ सब चुकतु कर रहा है। और परमात्मा उसको ऐसे ही डायरेक्ट कर रहा है ताकि मेरे हिसाब से चुकते हो जाए। और इस ज्ञान से ही पवित्रता आती है। आपस में कनेक्शन है, ज्ञान से बाबा ज्ञान सागर है, उससे हमें पतित से पावन बनाता है, ज्ञान सुना के पतित से पावन बनाता है। तो ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति आती है, शांति से प्रेम आता है, प्रेम से खुशी आती है, खुशी से आनंद आता है, आनंद से शक्तियां आती है। तो इस तरह से 7 एनर्जी निकल रही है। और जो आसपास जो एरिया है ना, जो ये जो हमारे हाइपोथैलेमस जो सेल्स आसपास हैं, वो बहुत सेंसिटिव सेल्स हैं, और वो ही हमारा एरिया बुद्धि कहलाता है। उन सेल्स में डिसीजन मेकिंग पावर है। जो मैसेज यहां से 7 एनर्जी मिली, वो हाइपोथैलेमस की सेल्स बाकी जगह डिसीजन को, पूरे ब्रेन को इस कोऑर्डिनेट करके डिसीजन दे देती, बुद्धि है ना। और बुद्धि के बाद बाहर जो है हमारे ब्रेन के डिफरेंट 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 पार्ट्स है ना, तो यहां पर हमारे हाइपोथैलेमस में संकल्प उठते हैं, यहां पे हमारी मेमोरीज रहती हैं, यहां पर हमारे भावनाएं और वृत्ति रहती है। तो मन में 4 बातें होती हैं, शायद आपने सुना भी हो पहले कभी, टीम है ना, इंग्लिश में कहते टीम, संकल्प, भावना, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। तो मन, जब हम मन की बात करें, मन को एक रस बनाएं, तो मन क्या चीज है, टीम है ना, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। बाबा ने 31 दिसंबर 1999 की मुरली में बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया था, पढ़ना, कि मन माना 4 बातें, मन के 4 एस्पेक्ट्स हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। स्मृति माना मेमोरीज, एटीट्यूड माना वृत्ति, भावना इमोशंस और संकल्प थॉट्स। तो जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति होती है, और जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसे हमारा वायुमंडल, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। स्मृति हमारे अंदर ही होती है कि मैं डॉक्टर हूं, मुझे डॉक्टर का प्रोफेशन है, या मैं अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान समझता हूं, मेरे को सम्मान है, जो बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं, वो स्थिति अंदर ही रहती है। किंतु वृत्ति जो एटीट्यूड है उसका वृत्ति का असर दूर तक फैलता है। जितने आसपास मेरे 7 भाई बहन बैठे हैं, उन सब में मेरा उस वृत्ति का असर होता है। जहां मैं रहता हूं उस वृत्ति का असर होता है, वहां वायुमंडल बन जाता है। और भावना से वाइब्रेशंस बनते हैं। वाइब्रेशन कहां तक जाते हैं, वाइब्रेशन कहां तक जाएंगे, कई 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर भी जा सकते हैं। आप यहां से चलना शुरू करते हैं, अपने सेंटर पे, अपने घर पे जाते हैं, तो वहां पर आपकी मदर या आपकी जो टीचर इंचार्ज है, वो आपको, आपसे बहुत प्यार है उनको, या आपको उनसे बहुत प्यार है, तो वाइब्रेशन कैच होने शुरू हो जाते हैं, नहीं है सर। और संकल्प कहां तक जाते हैं, संकल्प कहां तक जाते हैं, संकल्प पूरे पूरे यूनिवर्स तक जाते हैं, पूरे विश्व तक जाते हैं, एक्चुअली संकल्प परम धाम तक जाते हैं। संकल्प कहां तक जाते हैं, खाली सूक्ष्म वतन तक नहीं जाते हैं, परम धाम को भी टच कर, संकल्प परम धाम में संकल्प नहीं है, किंतु वहां भी हमारे संकल्प के जो वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं ऊपर बाबा तक, है ना। संकल्प नहीं जाएंगे वहां तक, क्योंकि संकल्प वहां है ही नहीं, किंतु सूक्ष्म वतन में तो जाएंगे, और उसके भी ऊपर वाइब्रेशंस बाबा तक पहुंच जाते हैं, खुशबू पहुंच जाती है संकल्प, भासना पहुंच जाती है, राइट। तो संकल्प जो है इतना पावरफुल है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, कि जो भी आप संकल्प करते हैं वो संकल्प पूरे यूनिवर्स में जाता है और 10 गुना होकर वापस आपको आता है। अगर आप कहते हैं मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो वो 10 गुना वापस सारे वातावरण को खराब करता हुआ, सूर्य चांद तारों को भी खराब करता हुआ, पांचों भूमि जल वायु अग्नि आकाश इन पांचों को खराब करता हुआ और वापस आपको 10 गुना 10 बार आके कहता है आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, राइट। अगर आप कहते हो नहीं मैं स्वस्थ हूं, या बोलते हो जैसे बाबा कहता है मैं नूरे रतन हूं, सोमान हमें मिला ना, मैं मस्तक मणि हूं, है ना बाबा, मैं दिल तक नशीन आत्मा हूं, तो वो सोमान जब आप लेते हैं तो वो सोमान आपको 10 गुना होकर के वापस आता है और आपको वही मैसेज देता है। तो संकल्प से, इसलिए कहा संकल्प से सृष्टि बनती है। द्वापर युग से जब से हमने तमोप्रधान, जब से रजो प्रधान और तमोप्रधान संकल्प करने शुरू किए, हमने ही सृष्टि को रजो प्रधान और तमोप्रधान बनाया है। हमारे संकल्पों से सृष्टि खराब हुई है, तो अभी हमको ही इसको सत्व प्रधान बनाना है। और मनुष्य आत्मा, क्योंकि हम आदि आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, और सारी मनुष्य आत्माएं जो द्वापर युग से आई, वो सभी मनुष्य आत्माओं को पतित बनाने के जिम्मेवार कौन है? तमो प्रधान बनाने के जिम्मेवार कौन? हम ही हैं। तो हमें ही उसको सत्व प्रधान बनाना है। तो जैसे संकल्प हम करेंगे वैसा ही सारी दुनिया बनती जाएगी। ऐसा कहा ना, ऐसा गीत बना ना एक हमारा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो ये जो है हमारा बहुत ही गहरा कनेक्शन है। स्मृति तो पहले बुद्धि है, उसके बाद स्मृति है, ये स्मृतियां हैं यहां पर ही फ्रंटल लोब में, फिर वृत्ति है, भावनाएं हैं, और फिर संकल्प, जो कुछ होता है सब संकल्प आके हाइपोथैलेमस में आके यहां आ जाते हैं। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस में केमिकल, जितने भी संकल्प आते हैं वो केमिकल में बदल जाते हैं, उनको न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं। और एक सेकंड में न्यूरोपेप्टाइड यहां से बनकर के सारी बॉडी में खून के द्वारा, एक सेकंड से भी कम समय में सारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, और पूरे हर अंग पे उसका असर, हर कोशिका पे उसका असर होता है। तो जो संकल्प आपने किया उसकी, उससे आपकी बॉडी की कोई कोशिका बच नहीं सकती है। तो हमारे संकल्प का कितना हमारे शरीर पर असर होता है, अपने शरीर पर तो हो ही रहा है, किंतु वायुमंडल पर कितना असर होता है आप समझ सकते हो, पूरी सृष्टि पर कितना असर होता है आप समझ सकते हैं। और बुद्धि में, बुद्धि के फिर अगले चार पार्ट हैं, बुद्धि अंदर है ना, उसके भी चार पार्ट हैं। जो एकदम अंदर वाला पार्ट है उसको दिल कहते हैं, उसको कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, और वो सातों गुणों से भरपूर अधिकतर रहती है। वो जो पार्ट है हमारा अधिकतर, अभी भी माना इस समय कलयुग के मनुष्यों का भी अभी वहां भी थोड़ा ज्ञान बाकी है, थोड़ी पवित्रता भले कम हो गई है किंतु ज्ञान थोड़ा बाकी है, पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां। इसलिए जब आदमी अंदर जाता है और अंदर जाके डिसीजन लेता है वो ठीक है डिसीजन होते हैं। तो हम आपसे बात करें दिल के बारे में। तो दिल क्या है? जो आत्मा का सबसे, जो आत्मा के नेक्स्ट जो है ना, जो जगह है, जो प्लेस कहो, जो सेल्स है, जहां पे सबसे ज्यादा ये एनर्जी है ज्ञान की, पवित्रता, और इसकी भी सीक्वेंस है, ये सात एनर्जी जो है ना, सात गुण है, इनकी भी सीक्वेंस है। इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं KPP KP2 लो हाई ब्लड प्रेशर, के फॉर नॉलेज, ज्ञान से पवित्रता है, पवित्रता से शांति है, शांति से प्रेम, रूहानी प्रेम है, और रूहानी प्रेम से अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति से आनंद की अनुभूति होती है, और आनंद से फिर ये शक्तियां आती है, परखने की शक्ति। जिस चीज में हमें आनंद आता है ना, वो हमें, उसको हम परखते हैं राइट, जिसमें आनंद नहीं आता है उसको हम रॉन्ग समझ लेते हैं, निर्णय करते हैं उसके बारे में, ये निर्णय कर लिया है ना, विस्तार को सार में समेट लेते हैं, समेटने की शक्ति आ जाती है, उसके लिए सब कुछ हम सहन करते हैं, सामना करते हैं, संभाल लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं। इस तरह सीक्वेंस में ऐसी एनर्जी रहती है। तो इस सातों एनर्जी क्या है? दिल में भरपूर रहती है। सत्व प्रधान शब्द कहां से आया? सात से आया, सात माना सत्व, प्रधान माना फुल। तो जब आत्मा सत्व प्रधान है, दिल सातों गुणों से भरा हुआ है, भरपूर है, ये दिल को ही तीसरी आंख भी कहते हैं। आत्मा का तख्त भी यही दिल है। तो ये दिल में, इसी दिल को जब दिल सातों गुणों से भरपूर है, सच्ची दिल कहते हैं। जो दिल सातों गुणों से भरपूर है वही सच्ची दिल है। और जिस दिल में एक बाप के सिवा दूसरे की याद नहीं है वो साफ दिल है। अगर हमारे दिल सतो प्रधान है, सातों गुणों से भरपूर है, तो हमारा उसके बाहर विवेक है, दिल के बाहर विवेक है। हाइपोथैलेमस में रिसर्च चल रही है कि उसके आसपास ही ऐसी सेल्स हैं जो हमें परखने की शक्ति, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। तो विवेक क्या है? बेसिकली परखने की शक्ति है। तो इतना ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद के आधार पर परखने की शक्ति बनती है। तो विवेक क्या है? विवेक कुछ और नहीं है, परखने की शक्ति को ही विवेक कहते हैं। और फिर बुद्धि प्रॉपर है, तो बुद्धि प्रॉपर क्या है? निर्णय करने की शक्ति। और चित्त क्या है? उसके बाहर चित्त है, सब कॉन्शियस माइंड। चित्त क्या है? चित्त बेसिकली कुछ और नहीं, विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति है। और उसके बाहर मन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप कंप्यूटर में, मैंने आपको एक डिक्टेशन दी, या किसी को कोई डिक्टेशन देता है, तो डिक्टेशन देखने के बाद हम क्या परखते हैं कि ठीक है गलत है, उसके बाद निर्णय करते हैं ओके। अगर वो ओके है तो हम उसको जाके सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव कर दिया तो क्या हुआ? मेमोरी में चली जाती है। उसके बाहर स्मृति है ना, उसके बाहर मन है, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, तो उस मेमोरी में चलेगी। अब जैसी स्मृति होगी वैसी वृत्ति बनेगी, जैसी वृत्ति होगी फिर वैसी भावना पैदा होगी, वैसे संकल्प चलेंगे। इसके बाहर फिजिकल बॉडी है हमारी, ये आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा और ये बॉडी के आठ अंग हैं। फिर उसके हिसाब से हमारे चेहरे पे चमक आएगी या उदासी आएगी, है ना। अब अगर मैंने, मेरे अंदर सात गुण कम हो गए, अभी क्या हुआ? जब सत्युग त्रेता में थे तो हम भरपूर थे, सात गुणों से भरपूर थे। जैसे ही हमारी एनर्जी कम हुई, सात गुण कम हुए आत्मा में, तो क्या हुआ? सात गुण कम हो गए तो विवेक में क्या हुआ? परखने शक्ति में कंफ्यूजन आ गया, बुद्धि निर्णय ले नहीं सकी। चित्त में क्या हुआ? चित्त अब जो है वो विस्तार को सराहने की शक्ति और समेटने की शक्ति कम हो गई। तो हम अब क्या है, बहुत सारी फाइल्स हमारी अनसेव्ड रहती हैं। जैसे सपोज आप फाइल सेव नहीं करो कंप्यूटर में तो क्या होगा? मेमोरी में नहीं गई किंतु ऐसी पड़ी है, तो फिर क्या होगी? जैसे कंप्यूटर में बिन होती है ना, डस्टबिन, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाँ जी, रिसाइकल बिन, है ना। तो वो वहां पड़ी रहती है ना। तो अगर हम डिसीजन नहीं लेते हैं राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते, तो हमारा चित्त क्या होता है? चंचल और अशांत हो जाता है। अगर हम राइट टाइम पे डिसीजन ले लेते हैं तो हमारा मन, हमारी चित्त शांत और एकाग्र हो जाती है। कहते हैं शांत चित्त, एकाग्र चित्त कहते हैं। तो अभी क्या हुआ, जब द्वापर युग आया तो हमारा मन के कॉन्टेक्ट में क्या थी? कर्मेंद्रियां थी, आंख, नाक, कान, मुख था। तो अब सात गुण, आठ गुण तो अंदर कम, सात गुण तो कम हो गए, किंतु मन ने क्या किया? ये जो पांच तत्व थे ना हमारे आसपास, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, आंखों से, नाक, कान, मुख से। तो हमने इसके बारे में सोचना, इसके बारे में कि भूमि के नीचे क्या है, वायु में क्या है, समुद्र के नीचे क्या है ना, आकाश में क्या है, सूरज में क्या है, चांद तारों में क्या है, तो उसका नॉलेज लेकर के पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा मन ने लेकर के उसको बुद्धि को फीड करना शुरू कर दिया। तो चित्त में गया और उससे फिर हमारा विवेक प्रभावित हुआ और वो चीजें फिर हमारे अंदर भी चली गई। सबसे पहले देह चली गई, सबसे पहले हम देह देखी ना, सामने अपनी भी देह देखी, दूसरे की भी देह देखी, तो हमारे मन, दिल में क्या, देह चली गई, देह के संबंध चले गए, देह के पदार्थ चले गए, देह के स्वभाव संस्कार चले गए। देह के स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? ये सात गुण। और आत्मा का संस्कार क्या है? रहम दिल और विश्व कल्याण का, विश्व कल्याण या कल्याणकारी। किंतु देह का स्वभाव क्या है? देह के स्वभाव पांच स्वभाव हैं देह के। कौन कौन से? सभी जानते हैं कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और मोर अहंकार। और देह का संस्कार क्या है? देह का संस्कार क्या है? आलस्य। अपने आप को देह समझोगे अपने आप आलस आएगा। छोड़ो ना, आज अमृत वेला, रात को 12 बजे सोए थे ना, अभी तो चलो आधा घंटे बाद उठ जाएंगे, साढ़े चार उठ जाएंगे। देह का संस्कार ही आलस्य है, देह का संस्कार ही अलबेलापन है, देह का संस्कार ही दूसरों में दोष निकालना है। अगर अपने को देह समझेंगे दूसरों में दोष निकालेंगे ही आप, पक्का निकालेंगे। ये ऐसा है, चाहे ब्राह्मण हो, भले आप हम ब्राह्मण हैं तो भी वो उसके ऊपर कमेंट करेंगे दूसरों पर, और बदला लेने की भावना। देह का संस्कार ही है शक करना, देह का संस्कार ही है अनुमान लगाना, देह का संस्कार ही है चिंता करना, देह का संस्कार है डर, भय लगना, और देह का संस्कार है जल्दीबाजी करना, और देह का संस्कार है ईर्ष्या करना। ये 10 मुख्य संस्कार हैं देह के। देह के स्वभाव 5 मुख्य हैं, है ना। और पदार्थ तो हम सभी जानते हैं, जो हमारी जो भी लौकिक हमारे पास पदार्थ होते हैं वो देह के पदार्थ हैं। तो एक्चुअली ये दिल में चले गए हैं, दिल में चले गए, और आत्मा के पास गुण बहुत थोड़े से रह गए। और ये किसके थ्रू गए? मन के थ्रू गए, दिल में। अब हमारा विवेक प्रभावित हो चुका है, किससे? क्योंकि दिल में ये चार चीज चली गई, तो अब विवेक उनके आधार पर परखता है, इससे मुझे क्या फायदा है, इससे मुझे क्या चीज मिलेगी, इससे मुझे नाम मान शान मिलेगा, इससे मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, तो उसको हम राइट परख लेते हैं, निर्णय वो उसके बेस पे निर्णय करते हैं। और बहुत सारे निर्णय हम कर नहीं पाते, क्योंकि दिल, अंदर का दिल कुछ कहता है और ये बाहर का दिल कुछ और कहता है, और विवेक कुछ और कह रहा है, निर्णय कर नहीं पा रहे, इसलिए हमारा चित्त में बहुत सारी फाइल्स अनसेव्ड पड़ी हुई है। ऐसे चित्त इतना भर गया है, इस समय 92% चित्त भरा हुआ है, 92% मेमोरीज कहां है? चित्त में पड़ी हुई है। 8% मेमोरीज ही कॉन्शियस है, और चित्त इसलिए प्रभावित, अब 92% कहां पर है? चित्त में है मेमोरीज, और 8% हमारे कॉन्शियस मेमोरीज है। तो बताइए क्या क्या असर करेगी, मन कैसे एक रस बनेगा? बनेगा, चित्त में इतनी सारी फाइलें अनसेव्ड पड़ी हैं, आपकी रिसाइकल बन इतनी हैवी हो चुकी है, तो आपकी जो फाइल, जो आपकी कॉन्शियस फाइल जो डेस्कटॉप पे है, वो चलेंगी क्या? चलेंगी नहीं। इतने सारे वायरस अंदर हैं, खोलोगे कोई फाइल खुलेगी कोई दूसरी वाली फाइल, स्मृति वो फाइल खुलेगी, फिर उसके हिसाब से वृत्ति होगी, फिर भावना वैसी, संकल्प वैसी चलेंगे। इसलिए हम कितना बाबा की मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, फिर भी क्या होता है? क्या होता है आप सभी जानते हैं, क्या होता है बताओ? उस व्यक्ति को देख करके जिसने आपको कभी कुछ कहा था, जिसने आपके पीछे कमेंट 10 साल पहले किया था, 20 साल पहले किया था, आज भी वो मेमोरीज अंदर है, उसको हम विनाश नहीं कर पाए इतना योग करने के बाद भी, 10-15 साल बाबा के कुमार बच्चे बनने के बाद भी क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए बताओ? आज भी मन एकरस नहीं है? जिनका मन सदा एकरस रहता है कोई हाथ उठाएगा? सदा एकरस रहता है, एक हाथ उठाओ कम से कम, कोई हाथ नहीं उठाएगा ना, एकरस रहता ही नहीं है, तो क्या कर रहे हैं वह? तो इसलिए क्या हो गया, बेसिकली आत्मा की एनर्जी कम हो गई, और क्योंकि आत्मा पहले 7 गुणों से नरिश करती थी, दिल में तो 7 गुण भरे हुए थे, विवेक को नरिश करती थी, विवेक को पोषण करती थी, बुद्धि को पोषण करती थी, चित्त को शांत एकाग्र करती थी, क्योंकि सब कुछ टाइम पर डिसीजन हो जाता था, और स्मृति में भरा हुआ था, ये 7 गुण ही भरे हुए थे, स्मृति आत्मिक थी सबके प्रति, भावना शुभ कामना सबके प्रति थी, चित्त में हमारे संकल्प श्रेष्ठ शुद्ध और कल्याणकारी थे, इसलिए हमारे हर अंग अंग से, रोम रोम से 7 गुण झलकते थे। सत्युग में प्रकृति कैसी थी? 50% ऑक्सीजन थी धरती पर, आज धरती पर 21% ऑक्सीजन है, 20% ऑक्सीजन है, सत्युग में 50% ऑक्सीजन थी, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन में कोई बैक्टीरिया नहीं था, कोई वायरस नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन में कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता है, कोई वायरस जिंदा नहीं रह सकता है, कोई भी फंगस नहीं हो सकती है, मक्खी नहीं हो सकती, मच्छर नहीं हो सकता है, सांप नहीं हो सकता, कॉकरोच नहीं हो सकता है ना? ये जिंदा, ये सब प्राणी कहां रहने वाले हैं? कम ऑक्सीजन में रहने वाले हैं। आपको पता है इस समय धरती पर 20% प्लांट्स हैं, धरती पर 20% धरती प्लांट से आच्छादित है, तो धरती पर 20% ऑक्सीजन है। 1814 में धरती पर 33% प्लांट थे, तो धरती पर 33% ऑक्सीजन थी। और जो डीप अंटार्कटिका में डीप आइस कोर ड्रिलिंग हुई तो वहां पता लगा गुफा में जो जो वायुमंडल निकला है उसमें 50% ऑक्सीजन थी, आज से 3000 साल पहले। तो 3000 साल पहले यहां धरती पर 50% ऑक्सीजन थी। तो आप सोच सकते हैं सतयुग में हमारी प्रकृति कितनी सदोप्रधान थी, हमारी काया कैसी होगी, कैसी काया होगी, कंचन काया ना। अभी 20% में हमारा मुंह लाल होता है ना, हाथ लाल होते हैं, तो वहां कैसा लाल होता होगा, कोई बैक्टीरिया बदबू होगी वहां पर। इसलिए वहां गर्म महल है, यहां पे गर्म जेल है, क्योंकि अंदर सब कीटाणु है, बदबू है ना। वहां पे खुशबू ही खुशबू है क्योंकि इतनी ऑक्सीजन है। तो बेसिकली आत्मा सतो प्रधान, आत्मा सात गुणों से नरिश कर रही है, मन को भी, स्मृति को भी, वृत्ति को भी, भावना संकल्प को, बॉडी के एक सेल को और सारी प्रकृति को भी। और द्वापर कलयुग में क्या हो गया, हम स्वराज्य आत्मा, स्वराज्य माना आत्मा का राज्य, स्व माने आत्मा, राज्य आत्मा का राज्य था मन बुद्धि संस्कार पर। संस्कार क्या है, जो भी स्मृति बार बार हम देखते सुनते हैं वो सब स्टोर हो जाती है, उसी को हम संस्कार कहते हैं। और वही हमारे विकर्म है जो स्टोर, मैंने जी मैंने किसी साथ किसी को गलत बोला या किसी ने मुझे गलत बोला, मेरा रिकॉर्ड हो गया। मैंने आज से 10 साल पहले कोई गलत काम किया, रिकॉर्ड हो गया। अब वो व्यक्ति जब मेरे सामने आता तो मुझे वो बात याद आती है और वही बात रिपीट हो जाती है, यही मेरा पाप कर्म है। मेरे को मेरे आसपास जो भी भाई बहन रहते हैं विकर्म, जो भी हॉस्पिटल में या घर में या कहीं पर शांतिवन में या लौकिक में कहीं पर, तो वो जब मिलते जुलते हैं उनके साथ जो कुछ हमने किया हुआ है या उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया हुआ है वो सब कुछ रिकॉर्ड है। और वो हमारे पिछले जन्मों के भाई बहन है, हमारे पिछले जन्मों के रिश्तेदार है, अभी भी हम शांतिवन में रहते हैं या आप जहां सेंटर में रहते हैं, वो सब आपके पिछले जन्मों के बहुत बड़े रिश्तेदार हैं, उनसे आपका लेन देन हिसाब किताब है, कई जन्मों का है, तो वो आपके साथ हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड है। तो अब आत्मा कैसे, हम अब मन का राज्य है, इसलिए मन का राज्य है, जो स्मृति में रिकॉर्ड है ना उनका ही राज्य चल रहा है, इन्हीं मन का पार्ट है स्मृति, संस्कार मन का ही पार्ट है एक्चुअली, उसी का राज्य चल रहा है, वही राज्य कर रहा है बुद्धि पर भी, वही राज्य कर रहा है चित्त पर भी, वही राज्य कर रहा है विवेक पर भी, वही राज्य कर रहा है दिल पर भी, आत्मा पर भी। तो आत्मा परवश है, अब क्या करें, बाबा कहता बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, मन को स्थिर करो, मन को एकरस बनाओ, क्या करें, क्या करें, कुमार बताएं सभी, भट्टी आपने भट्टी की ना, कैसे मन को एकरस बनाए, क्या तरीका है, एक बाप की याद में रहें, हैं जी, मन को बिजी रखना है किस चीज में, एक बाबा की याद में, बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मतलब मुख्य बात क्या है, जब तक दिल में सात गुण नहीं भरेंगे, जब तक दिल हमारा सात गुणों से भरपूर नहीं होगा, आत्मा सात गुणों से भरपूर नहीं होगी, तब तक ये हमारा जो भी हमारा विवेक और बुद्धि राइट डिसीजन नहीं लेगी। जैसे ही हम बाबा को दिल में, मतलब मन में बाबा को याद, दिल में बाबा को याद करें सच्चे दिल से, सच्चे दिल माना कि अपने आप के ओरिजिनल स्मृति को बार बार रियलाइज करेंगे, इसमें मेहनत है, अपने आप से बात करके गहराई से, चलते फिरते उठते बैठते यही अपने आप से बात करनी है, यही हमारा पहला लेसन और आखिरी लेसन है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं हूं ही शुद्ध आत्मा, मैं हूं ही पवित्र आत्मा। जितना इसको बार बार रियलाइज करेंगे तो हमारे अंदर बाप से कनेक्शन लगेगा और सात गुण भरेंगे आत्मा में, और जब आत्मा में सात गुण भरेंगे, आत्मा सत्व प्रधान बनेगी, तो हमारा विवेक क्या करेगा, राइट को परखना शुरू करेगा, और राइट को परखेगा और फिर दिल बुद्धि डिसीजन लेगी, बुद्धि दिव्य बन जाएगी, इसी को सच्ची दिल कहा, सत्व प्रधान बुद्धि को ही, सत्व प्रधान दिल को ही सच्ची दिल कहा। पर सत्व प्रधान दिल में एक बाप की, सिर्फ एक बाप की अपनी स्मृति और बाप की स्मृति होगी, और साफ दिल का मतलब सिर्फ इसमें एक बाप दूसरा ना कोई। तो जब ऐसी स्थिति होगी तब हमारी बुद्धि दिव्य होगी, और तब हम क्या करेंगे, राइट डिसीजन लेते जाएंगे, चित्त में विस्तार को सार में समाते जाएंगे और समेटते जाएंगे और फाइल नई मेमोरीज रिकॉर्ड होती जाएंगी। और जब ऐसी याद होगी तो क्या होगा, बेसिकली क्या होता है, विक्रम विनाश कैसे होते हैं, विक्रम विनाश कैसे होते हैं, विक्रम विनाश का मतलब है कि हम बाबा की याद में इतने टिक जाएं कि हमारी पुरानी मेमोरीज रिकॉर्ड से खत्म हो जाएं। वो कैसे होती हैं? नॉर्मली हम एक मिनट में 15 विचार करते हैं, नॉर्मली 15 विचार हम एक मिनट में करते हैं, और 15 विचार जब हम करते हैं तो, और अगर हम देह के बारे में सोचना शुरू करते हैं, देह के संबंधों के बारे में, देह के पदार्थों के बारे में, देह के स्वभाव संस्कार के बारे में विचार बढ़ जाते हैं, 20 हो जाते हैं, 25, 30, 35, 40 हो जाते हैं, तो उससे हमें चिंता और गुस्सा, इरिटेशन और विकार की और ज्यादा टेंडेंसी बढ़ती है, हम उस तरफ जाते हैं। इसकी बजाय अगर हम ABCD को चिंतन करना शुरू करें तो हमारे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। जब 15 की बजाय हम 8 पे आ जाते हैं तो हमें शांति महसूस होती है। EEG में भी देखें तो इसको हम पीसफुल रिदम कहते हैं, अल्फा रिदम को पीसफुल रिदम कहते हैं। जब 8 विचार हो जाते हैं ना तो शांति क्या है, बेसिकली शांति किसे कहते हैं, कम विचारों को शांति कहते हैं, और अशांति किसे कहते हैं, ज्यादा विचारों को अशांति कहते हैं। तो जो नेगेटिव विचार होते हैं फास्ट होते हैं और पॉजिटिव विचार स्लो होते हैं। तो जब ABCD का हम चिंतन करते हैं, गहराई से ABCD को हम रियलाइज करते हैं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध एक बाप से हैं और ये संसार एक ड्रामा है, खाली कहने की बात नहीं, बहुत गहराई से रियलाइज करते हैं। जैसे आपके साथ जो भी पार्ट है, जिन आत्माओं का एक्टर्स हैं जो आपके साथ आपके संबंध में है, लौकिक अलौकिक सेंटर पे हैं जो भाई बहन, उनके साथ अपने ड्रामा को पार्ट में साक्षी होकर देखते हैं, और फिर हम क्या होता है हमारे अंदर, हमारी संकल्प कम होते जाते हैं, संकल्प जैसे जैसे कम होते जाते हैं तो 8 पे आने पर शांति महसूस होती है, 6 पर आने पर प्यार महसूस होता है। जैसे संकल्प कम होते हैं, हमें प्यार का मतलब क्या है, रूहानी प्यार का मतलब क्या है, हमें अपनी गलती रियलाइज होने लगती है कि मैंने उसको गुस्सा किया, मैंने उसको डांटा, गलती तो मेरी थी, अहंकार में तो मैं था, तो उसके प्रति हमें प्यार आता है, इसे कहते हैं रूहानी प्यार। और जब सिर्फ 4 ही विचार रह जाते हैं तो हमें क्या होता है, अतिंद्रिय सुख की फीलिंग, 4 माना ABCD, जब 4 ही विचार रह गए तो उसे कहेंगे हम क्या फील करते हैं, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति अनुभव करते हैं। अतिंद्रिय सुख का मतलब क्या है, एक तो इंद्रियों का सुख हो गया, देखने का सुख, बोलने का सुख, सूंघने का सुख, खाने का, सुनने का सुख, छूने का सुख, खाने का सुख। अतिंद्रिय माना मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, परमात्मा मेरे साथ है, भगवान का बच्चा हूं, ये अनुभूति होना, ये है अतिंद्रिय सुख। तो ये हमें जो मरने का डर नहीं, बूढ़ा होने का डर नहीं, बीमार होने का डर नहीं, तो जब इस स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारे अंदर अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। एक्चुअली क्या है ये, जो एक बहुत अच्छा योग का जो तरीका जो मैंने पाया, जब हम अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर समझते हैं, यह ज्ञान हमारे अंदर आ गया तो सारी दुनिया अज्ञानी है, तो हम हमारे अंदर वो ज्ञान भरता है जिससे हम लोग, हमारा लेवल ऊंचा हो जाता है आम दुनिया से, पवित्रता महसूस करते हैं तो हमारा लेवल और ऊंचा हो जाता है, शांति महसूस करते हैं और ऊंचा हो जाता है, और प्रेम महसूस करते हैं, रूहानी प्रेम, तो हम सूर्य चांद तारों में पहुंच जाते हैं। और अतिंद्रिय सुख की अनुभूति माना जब हम 4 विचार पे खाली रह जाते हैं तो हम सूक्ष्मतम में पहुंच जाते हैं। ये जो 5 अतिंद्रिय सुख की अनुभूति में कब किसका क्या कनेक्शन है, ये 500 तत्वों से परे की बात है। जैसे ही आप अपने आप को इस विचार में चलते चलते 4 विचार पे पहुंचेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे। कभी आप अनुभव करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना, ऐसे ही बैठ के ABCD का चिंतन करना, पवित्रता का अनुभव करना, शांति का अनुभव करना, प्यार का अनुभव करना, और जैसे अतिंद्रिय सुख की अनुभूति में पहुंचेंगे, विचार कम होते जाएंगे, खाली ABCD पे रह जाएंगे, तो आप अपने आप को सूक्ष्म वतन में पाएंगे। और जैसे सिर्फ जब 2 विचार रह जाएंगे, मैं और मेरा बाबा, तो क्या होगा, आप बाबा अपने आप को ब्रह्मा बाबा की गोद में पाएंगे। आनंद माना ही क्या है, 2 विचार। और जब एक ही विचार रह जाएगा, बाबा, सिर्फ बाबा, मतलब बाबा के प्यार में लवलीन हो जाएंगे, तो आप अपने आप को परमधाम में पाएंगे। तो एक विचार जब हो जाता है और जब आप अपने आप को परमधाम में पहुंच जाते हैं, और उससे भी आप फिर एक विचार से भी कम में पहुंच जाते हैं अपने आप को, तब तो आप अपने आप को ज्योति बिंदु महसूस करना, आपको दिखाई देना कि मैं ज्योति बिंदु देख रहा हूं, अपना बाबा को देख रहा हूं। यहां बैठे बैठे आपको ऐसा फील होगा बाबा है चमकता हुआ सितारा और मैं चमकता हुआ सितारा परम धाम में। उस स्थिति में हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, मेरा कनेक्शन मैं आत्मा शरीर में ही हूं किंतु मैं मन और बुद्धि से वहां हूं, तो उस समय मेरे अंदर यह रिकॉर्ड होने लगता है मैं आत्मा हूं और जो भी है वो सब आत्माएं हैं, हम एक बाप की संतान है और ये संसार एक ड्रामा है। तो जो पुरानी मेमोरीज थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा किया, जो विक्रम के रूप में रिकॉर्ड है, वो मेमोरीज डिलीट होने लगती है। इसी को कहते हैं विक्रम विनाश करना। और विक्रम विनाश सिर्फ बीज रूप स्थिति में ही होते हैं, परम धाम में ही होते हैं। और ये स्थिति तभी पॉसिबल है जब हम चलते फिरते उठते बैठते बार बार इसको रियलाइज करते रहे, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, एबीसीडी को बार बार रियलाइज करते रहे। बड़ी अच्छी लाइन एक बाबा की मुरली में थी, अभी शायद आपको पता होगा, शायद 15 दिन पहले की बात है, कि सब कुछ भूल अशरीरी बनो तो हिसाब किताब चुकता होगा। ये लाइन ही मुझे इतनी अच्छी लगी, जब भी मैं इस लाइन को चिंतन करता हूं तो क्या होता है, एकदम परम धाम में पहुंच जाता। सब कुछ भूल अशरीरी बनो तो क्या होगा, सब कुछ भूल माना देह को भूलो, देह के संबंधों को भूलो, देह के स्वभाव संस्कार को भूलो, देह के पदार्थों को भूलो, देह की बजाय अपने मैं आत्मा हूं, मेरे संबंध सर्व संबंध शिव बाबा से है। एक एक संबंध में, मां के रूप में संबंध, बाप के रूप में संबंध, टीचर के रूप में संबंध, मां के रूप में संबंध में आधा घंटा योग हो सकता है, बाप के रूप में संबंध में आधा घंटा योग कर सकते हो, है ना, खो जाओ आधा घंटा बाप के रूप में संबंध में, टीचर के रूप में संबंध आधा घंटा योग हो सकता है, सतगुरु के रूप में संबंध आधा घंटा योग कर सकते हो। योग क्या है बेसिकली, एक एक संबंध की अनुभूति में खो जाना। तो चलते फिरते वो योग, हम लोग अमृत सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, इसी स्थिति में वॉक करते हैं, तो इतना बढ़िया उसमें क्या होता है, इतनी स्थिति बनती है। तो जब हम ऐसी स्थिति में रहते हैं तो हम परम धाम में, फिर धीरे 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 ऐसे विचार कम होते 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 हम परम धाम में पहुंच जाते हैं चलते फिरते भी, और उसमें जल्दी जल्दी विक्रम विनाश होते हैं। तो फिर क्या, इसकी निशानी क्या है विक्रम विनाश होने की, जब आप उस व्यक्ति से मिलेंगे जिसने आपको कुछ कहा, जिसने आपसे मिसबिहेव किया, आपको याद ही नहीं आएगा इसने मुझे क्या कहा था या मैंने इसको क्या कहा था, यह निशानी है कि विक्रम विनाश हो गया। ठीक है, नहीं कहते ना विक्रम विनाश की क्या निशानी है, अब उस व्यक्ति को देख करके आपके मन में कोई संकल्प नहीं आएगा, बस यही लगेगा ये आत्मा है, मैं इसका भाई हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा है। जरा भी पुरानी बात याद नहीं आएगी, ये दादी में हम देखते थे, बड़ी दादी थी ना, दादी जी दादी के पास जाओ, दादी के पास मिलते जाते थे ना, कोई भाई कुछ सुना के जाता था, वही भाई थोड़ी देर में वापिस आएगा, फिर दादी को आओ बैठो, आज बैठो, कैसे हो, जैसे दादी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या भाई अभी क्या बोल के गया था। ये मैं राइट टाइम की बात बता रहा हूं, 95, 96, 97 की बातें बता रहा हूं, जब दादी जी बिल्कुल ठीक ठाक थे, 2000 की बातें बता रहा हूं, मतलब दादी को जैसे कोई वो भाई क्या बोल के गया, क्या झगड़ा हुआ था दोनों का आपस में, अभी दादी ने झगड़ा सुलझाया उनका प्यार से, है ना, और अभी थोड़ी देर में दादी जी से भूली गई, क्या उनका हुआ समा लिया, है ना, तो विक्रम विनाश की स्थिति। तो ये स्थिति, अगर आप इस स्थिति में रहेंगे तो विक्रम विनाश इसके लिए तभी पॉसिबल है, अमृत वेला ही पॉसिबल है विक्रम विनाश करना। क्यों, पर अमृत वेला वो स्थिति कब लगेगी, वो कब होगी, जब हम सारा दिन ये स्थिति में रहेंगे, एबीसीडी की स्थिति में रहेंगे। अगर हम सारा दिन फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, फरिश्ता स्थिति माना क्या, 2, 3, 4 की स्थिति को फरिश्ता स्थिति कहते हैं। अगर आप चलते फिरते आपके साथ 2, 3, 4 संकल्प भी चलते हैं तो उसे फरिश्ता स्थिति कहते हैं। 2, 3, 4 माना मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरे सर संबंध उसके साथ है, और मैक्सिमम ड्रामा, जो हुआ ड्रामा, साक्षी होकर देखते रहो सारा दिन। अगर 5वें संकल्प पे गए, 6ठे संकल्प पे गए, तो फिर आपको सुबह अमृत वेला क्या होगा, अमृत वेला अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा माना बैठोगे ना अमृत वेला करने तो 10 मिनट तो फरिश्ता बनने में लग जाएंगे, फिर 10 मिनट फरिश्ता स्थिति में टिकने में लग जाएंगे, और फिर 2 मिनट परमधाम में जाओगे वापस आ जाओगे नीचे, फिर 10 मिनट फिर वहां रहोगे, फिर 10 मिनट नीचे आने में लग जाएंगे, योग खत्म हो जाएगा। तो कम से कम अगर हमें अपने विक्रम विनाश करने जल्दी से जल्दी और मन को एकरस बनाना है तो कम से कम हमें आधा घंटा, कम से कम हमें आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो कम से कम हमें परम धाम में रहना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है, क्योंकि जब तक पुरानी स्मृतियां सबकॉन्शियस माइंड में जो रिसाइकिल बिन है, जब तक वो पुरानी सबकॉन्शियस माइंड इतना हैवी हो गया है, उसको जब तक चित्त हमारा इतना हैवी हो गया, जब तक वो मेमोरीज को हम डिलीट नहीं करेंगे परमधाम में रह करके, तब तक क्या होगा, वो मेमोरीज हमारे बुद्धि को और विवेक को प्रभावित करती रहेंगी और वो बार बार देहवान को लाती रहेंगी दिल में, देखे संबंधों की याद लाती रहेंगी, देखे पदार्थों की याद लाती रहेंगी और देखे स्वभाव संस्कार की याद लाती रहेंगी। और हम वहीं के वहीं, किसने कोलू का बैल नहीं होता है, कितना कितना दौड़ता है बेचारा सारा दिन रात, पहुंचता कहां पर है, वहीं दौड़ता रहता है ना। तब तक हम सचमुच में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमारा अमृत वेला बहुत बहुत पावरफुल होना चाहिए। साथ साथ जब हमारी ये स्मृति जब ठीक हो जाए, हमारा ये डिलीट हो जाए ना पुराना, तब हमारा मन ट्रांसपेरेंट बनेगा, तब कॉन्शियस माइंड होगा, तब कॉन्शियस माइंड होगा तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे। हमारा 100% अभी 92% माइंड हमारा अनकॉन्शियस है और सबकॉन्शियस है, सिर्फ 8% मन कॉन्शियस है। तो हम 8% को तो कंट्रोल कर लेते हैं, किंतु 92% हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए हमसे आज भी गलत काम हो जाते हैं, नहीं चाहते भी हो जाते हैं, नहीं चाहते भी गलत बोल निकल जाते हैं, गलत बातें सोच लेते हैं। तो जब इसके लिए बहुत पावरफुल अमृत वेला करेंगे, बहुत पावरफुल याद में रहेंगे, सोने के पहले चार्ट चेक करेंगे, लेटर लिखेंगे, ये मैंने बहुत अनुभव किया है, सोने से पहले एक लेटर बाबा को जरूर लिखो। जो लास्ट ईयर 31 मार्च को बाबा ने कहा था 2010 में, बाबा ने कहा था सोने के पहले मन बुद्धि को खाली करो, फिर सो जाओ, बाबा की गोद में सो जाओ। और मैंने इसका अभ्यास करके देखा है प्रैक्टिकली, कि मैं लेटर लिख के सोता हूं तो उससे मेरा सुबह सुबह अमृत वेला अपने आप टाइम पर होता है और उठते अच्छी स्थिति बन जाती है। तो ये आप अभ्यास करके देखें, और उसके लिए अमृत वेला जब पावरफुल होगा तो आपके विक्रम विनाश होंगे, और विक्रम विनाश होने से ऑटोमेटिक दिल में से देह देह के संबंध देह के स्वभाव संस्कार का भाव निकल जाएगा, फिर हमारा विवेक ईश्वरीय बन जाएगा, बुद्धि दिव्य बन जाएगी। दिव्य बुद्धि का मतलब सतो दैवी गुणों पर आधारित, सत्यता पवित्रता पर आधारित बुद्धि, सरलता मधुरता संतुष्टता पर आधारित बुद्धि, हर्षित मुक्ता पर आधारित बुद्धि, सहनशीलता पर आधारित बुद्धि। और फिर हमारा ये बनेगा, उसके बाद जो होगा फिर हमारी ये चित्त जो होगा शांत और एकाग्र हो जाएगा, वो डिलीट होने के बाद फिर हमारी स्मृतियां कैसे होंगी, स्मृतियों में फिर सर एबीसीडी रह जाएगा, और जब स्मृतियों में एबीसीडी रहेगा तो फिर हमारी वृत्ति जो होगी हमारी आत्मिक रहेगा, सबके प्रति आत्मिक हो जाएगी, भावना सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना हो जाएगी, और संकल्प श्रेष्ठ शुद्ध और कल्याणकारी हो जाएंगे। तो ये है मन को, तब हमारा मन एकरस बनेगा। और मनमना भाव का मतलब भी यही है कि मनमना भाव का मतलब यही है कि चारों स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प चारों बाबा में लग जाए। स्मृति में एबीसीडी हो, वृत्ति में सबके प्रति आत्मिक भावना हो, आत्मिक वृत्ति हो, और भावना सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना हो, और श्रेष्ठ शुद्ध और कल्याणकारी संकल्प हो सबके प्रति, तब हमारा मन सदा के लिए निरंतर बाबा की याद में लगा रहता है, उसी को हम मन मना भाव कहते हैं। और तब ऐसा होने पर तभी हमारी दृष्टि सबके प्रति कैसी बनेगी, कल्याणकारी दृष्टि बनेगी, शुद्ध दृष्टि बनेगी, तब हमारे मुख से मीठे बोल निकलेंगे। जितने भी गुण है ना दैवी गुण, जब आत्मा सात गुणों में भर जाती है तो बाहर दैवी गुणों के रूप में हमारे कार्य व्यवहार होता है, सत्यता से पवित्रता से निर्भयता से होता है, और तब हमारी हमारी सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती, तब स्वराज्य अधिकारी बने हम, तब आत्मा का राज्य मन बुद्धि संस्कार पर होता है और हमारा मन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और उसी को हम फरिश्ता कहते हैं। मन ट्रांसपेरेंट माना अब सब कुछ मेरा 100% मन कॉन्शियस हो गया है, स्मृति भी कॉन्शियस है, मुझे पता है मेरे मन में क्या स्टोर है, वृत्ति भी कॉन्शियस है, भावना भी कॉन्शियस है, और संकल्प क्या उठ रहे मुझे पता है, तो इसको ही फरिश्ता कहते हैं। तो इतना सारा काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमृत वेला पावरफुल, और मुरली दिन में अटेंशन क्या करनी पड़ेगी, मैं एक बार मैंने सिर्फ चिंतन किया था कि एक दिन में हम 16,000 बार सांस लेते हैं, एक दिन में कितने सांस लेते हैं, एक मिनट में 14 बार, रात में 10-12 बार सांस लेते हैं सोते समय, तो टोटल मिला के 16,000 सांस बनते हैं। जिनको श्वासों श्वास मुरली याद रहती है, या बाबा ने आज सुबह क्या कहा था वो याद रहता है, स्मृति में रहेगा तो काम कर्म में आएगा। तो जिसके श्वासों श्वास मुरली याद रहती है वो अष्टतन में आते हैं। दादियों को श्वासों श्वास मुरली, आधी रात में उठा के पूछो ना दादी बाबा ने क्या कहा था, बाबा ने ये कहा था, और कुछ याद नहीं होगा, बाबा ने क्या कहा था वो याद होगा। देखो जानकी दादी आती हैं, मुरली के कौन कौन से गहरे गहरे पॉइंट एक बार पढ़ के आती हैं, गहरे गहरे पॉइंट हमको भूल जाएंगे, हम भी रोज सुबह मुरली पढ़ के आते हैं कि तो हमको कभी भूल जाते, दादी एकदम वो पॉइंट पकड़ लेती है और सुनाती है उसको, चिंतन कर, इतना गहरा चिंतन करती है। तो जिनको श्वासों श्वास मुरली याद है, बाबा क्या कहता है बाबा की याद है, वो अष्टतन बनते हैं। जो एक दिन में 100 बार मुरली को याद करते हैं, बाबा ने क्या कहा उनको मुरली के वो पॉइंट बार बार याद आते हैं, वो 108 के माला के दाने बनते हैं। 108 माना जो एक घंटे में 6 बार कम से कम मुरली को रिवाइज करते हैं मन में, और जो 16,000 में कौन आते हैं, जो कम से कम दिन में 8 बार मुरली को रिवाइज करते हैं, हर पहर 3 घंटे का पहर होता है, हर 3 घंटे में एक बार मुरली रिवाइज करते हैं, तो कम से कम 8 बार अगर मुरली रिवाइज करेंगे तो 16,000 की माला में आएंगे। ठीक है, क्योंकि याद की स्मृति रिवाइज करेंगे तो स्मृति में रहेगा, स्मृति में रहेगा तो हम उस पर चलेंगे, नहीं तो पता ही नहीं रहता, सुबह का शाम को पूछे तो पता ही नहीं रहता किसी को कि मुरली में आज बाबा ने क्या कहा था, आज का वरदान क्या था, आज का स्लोगन क्या था, है ना। याद रहेगा तो हम यूज करेंगे ना, मेरी जेब में 500 रुपए पड़े हैं और मुझे पता ही नहीं मेरी जेब में 500 रुपए हैं, पानी मेरे को प्यास लगी है, पानी पी नहीं सकता हूं, कुछ बाजार से फल लेके खा नहीं सकता हूं, है ना, स्मृति नहीं ना, तो स्मृति होगी तो यूज करेंगे। और अगर हम 9 लाख में आना है, खैर उसकी मैं बात आपसे नहीं करूंगा, वो कम से कम एक बार मुरली तो सुन, हम तो खैर सुनते हैं सभी मुरली एक बार, किंतु अगर हमें 16,000 की माला में भी आना तो 8 बार मुरली रिवाइज करनी पड़ेगी। तो पुरुषार्थ बहुत है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल है क्या, मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा मन ऑटोमेटिक एकरस हो जाएगा और हम तभी मनसा सेवा कर सकेंगे, क्योंकि जब हमारे 4 संकल्प होते हैं, 15 संकल्प होते तो हमारा ऑरा स्किन के लेवल पे रहता है, जब हमारे 6-8 संकल्प होते हैं तो हमारा ऑरा लगभग 6 इंच हो जाता है, ऑरा माना यही 7 गुणों की एनर्जी हमारे आसपास हमारे इकट्ठी हो जाती है, और जब हमारे संकल्प 4 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं तो लगभग हमारा 1 मीटर का ऑरा हो जाता है, और जब हमारे संकल्प 4 हो जाते हैं तो लगभग 8 मीटर का ऑरा हो जाता है, 8 मीटर तक, जब 2 हो जाते हैं तो लगभग पूरा डायमंड हॉल जितना ऑरा हो जाता है, और जब 1 हो जाता है तो समझो पूरा 1 शहर जितना ऑरा हो जाता है, शहर जितना है। तो आप समझ सकते हैं जब हम एक इस परमधाम में, जब बाबा कहते हैं ना जब परमधाम में याद में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक सारे विश्व में वाइब्रेशन जाते हैं, तो स्थिति बनने में तभी बनेगी जब हम सारा दिन फरिश्ता स्थिति में रहेंगे और सुबह बीज रूप स्थिति में रहेंगे। ये फरिश्ता स्थिति में कोई विक्रम हमसे नहीं होगा और बीज रूप स्थिति में फिर विक्रम विनाश होंगे। अगर दिन में मैंने 1 विक्रम कर लिया, 4 से अधिक संकल्प कर लिए तो क्या होगा, फिर विक्रम हो जाएंगे, विक्रम हो जाएंगे तो सुबह अमृत वेला बीज रूप नहीं होगा, बीज रूप नहीं होगा तो पुराने विक्रम विनाश नहीं होंगे और नए विक्रम होते रहेंगे। तो ये सीक्वेंस हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसलिए बार बार मुरली, इसका स्थूल तरीका है मुरली को मन में बसा के रखो। मुरली माना 100% पॉजिटिव टीम, जिसकी मन में सिर्फ मुरली बस गई है उसकी टीम, उसका मन अपने आप ही एकरस हो जाएगा, मन अपने आप पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ये विचार, ये पावरफुल बनने का तरीका सिर्फ ये है, अमृत वेला मुरली और फिर सोने के पहले लेटर लिखना, चार्ट चेक करना और फिर बाबा की गोद में सो जाना। और दिन में तो बाबा ने ड्रिल बताई है, जो मैं कौन सी ड्रिल यूज करता हूं, मैं कैसे मुरली रिवाइज करता हूं, ब्रेकफास्ट करने के पहले एक बार मुरली, जैसे घर में बैठता हूं ब्रेकफास्ट करता हूं तो मुरली निकाल लेता हूं जेब से, एक बार मोटे मोटे पॉइंट पढ़ लेता हूं, फिर नाश्ता करने के बाद कर लेता हूं, फिर कार में बैठता हूं फिर एक बार देख लेता हूं, फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर दोबारा से योग करते हैं तो फिर वहां मुरली का पॉइंट रिवाइज कर लेता हूं, फिर 11 बजे फ्रूट खाता हूं फिर एक बार मुरली रिवाइज कर लेता हूं, फिर लंच करने से पहले फिर मुरली रिवाइज कर लेता हूं, सारी नहीं, दो चार लाइन, जो इंपॉर्टेंट लाइन जो अंडरलाइन कर लेता हूं, फिर लंच करने के बाद रिवाइज कर लेता हूं, फिर 1 घंटा रेस्ट करता हूं, फिर उठने के बाद एक बार मुरली रिवाइज कर लेता हूं, फिर कार में बैठता हूं दोबारा चलने के वास्ते फिर मुरली निकाल के एक बार रिवाइज कर लेता हूं मोटे मोटे पॉइंट्स, फिर ऐसे शाम को फिर आता हूं वापस, वहां जाके बैठ के योग करता हूं, फिर मुरली रिवाइज कर लेता हूं, फिर शाम को ऐसे, मतलब कैसे कैसे करके आप पानी पीने के समय, खाना खाने के समय, फल खाने के समय, कार में बैठने के समय, आप सही मानो तो कितनी बार, 20 बार मुरली रिवाइज कर सकते हो अगर अटेंशन रखो तो, और उससे हमारा मन एकरस होगा। ठीक है, ओम शांति। हां जी बोली। हां जी हां बोली। गहरी नींद में सोते तीन या चार विचार, दो या तीन विचार, दो या तीन, इसलिए हम रिलैक्स महसूस करते हैं। चलो एक मिनट, चलो बाबा को याद करें।